संदर्भ समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप। नंबर वन, सदस्यता समूह या अंतः समूह संदर्भ समूह के रूप में, मेंबरशिप ग्रुप एज ए रेफरेंस ग्रुप। जिन समूहों में सामाजिक गतिशीलता की संभावना जितनी अधिक होती है, उसके सदस्यों में उच्च आशाएं व महत्वाकांक्षाएं भी उतनी ही अधिक होती हैं। यह बात द अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक के अध्ययन से ज्ञात हुई। सैनिक लोग अपनी पदोन्नति के अवसरों का मूल्यांकन अपने ही समूह के अन्य सदस्यों की आकांक्षाओं एवं उपलब्धियों को ध्यान में रखकर करते हैं। जिन सदस्यों की पदोन्नति हो जाती है, जिन्हें वीरता के लिए कोई विशेष पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, जिनकी स्थिति उपलब्धियों के आधार पर उच्च हो जाती है, वे उसी समूह के अन्य सदस्यों के लिए आदर्श बन जाते हैं। यह अन्य सदस्य उनसे प्रेरणा प्राप्त कर उनके अनुरूप बनने और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ सदस्यता वाला समूह ही संदर्भ समूह बन जाता है। यहाँ व्यक्ति अपनी स्थिति का मूल्यांकन अपने सदस्यता समूह के अन्य सदस्यों से अपनी तुलना करके करता है। नंबर दो, बहुल संदर्भ समूह, मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप। मार्टन ने बहुल संदर्भ समूह के दो प्रकारों का उल्लेख किया। प्रथम, परस्पर विरोधी संदर्भ समूह, तथा द्वितीय, परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूह। पहला, परस्पर विरोधी संदर्भ समूह। जब व्यक्ति के जीवन में दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी संदर्भ समूह होते हैं, तो उसे इनमें से एक को चुनने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह परिस्थितियों की समानता से प्रभावित होकर संदर्भ समूह का चुनाव करता है। मिड ने बताया कि समान स्थिति वाले अंतः समूह एवं वह समूह अधिकतर संदर्भ समूह के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति किसी ऐसे समूह को अपने लिए संदर्भ समूह के रूप में नहीं चुनता जो उसके लिए पूरी तरह से भिन्न परिस्थिति वाला हो या अनजाना हो। दूसरा, परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूह। सामान्यतः व्यक्ति सामान्य आयु समूह तथा समान वैवाहिक स्थिति समूह तथा समान शैक्षिक स्तर वाले समूह को अपना संदर्भ समूह बना लेता है। ये तीन प्रकार की श्रेणियां ऐसे तीन समूहों को व्यक्त करती हैं जो व्यक्ति के लिए परस्पर शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूहों के रूप में कार्य करते हैं। इन तीनों ही समूहों में व्यक्ति तुलना के आधार पर परिस्थितियों की समानता पाता है। मार्टन ने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति जिस समूह से जितना अधिक व निरंतर संपर्क में रहेगा, वह समूह उस व्यक्ति के जीवन को उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। व्यक्ति पर पारस्परिक रूप से गहरा सहारा देने वाले संदर्भ समूहों का प्रभाव काफी अधिक पड़ता है। नंबर तीन, असदस्यता या गैर सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में, नॉन मेंबरशिप ग्रुप एज ए रेफरेंस ग्रुप। मार्टन की मान्यता है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति केवल उसी समूह से संबंधित हो जिसका कि वह सदस्य है। यह भी संभव है कि व्यक्ति किसी ऐसे समूह से भी संबंधित हो सकता है जिसका कि वह सदस्य नहीं है। वह ऐसे किसी समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा अपने मन में सजो सकता है। यदि ऐसा कोई समूह उसके विचारों, मूल्यों, स्थिति एवं व्यवहार को प्रभावित करता है, तो वह समूह उसके लिए गैर सदस्यता संदर्भ समूह होगा। व्यक्ति इस समूह का सदस्य तो नहीं है, परंतु सदस्य बनने की इच्छा रखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। नंबर फोर, सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेफरेंस ग्रुप। मार्टन का कहना है कि व्यक्ति की दृष्टि से संदर्भ समूह सदैव सकारात्मक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। किसी संदर्भ समूह का व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने लिए किसी ऐसे समूह का चुनाव भी कर सकता है जिसका उस पर स्वस्थ प्रभाव पड़े, और कभी किसी ऐसे का भी जिसका उस पर अस्वस्थ प्रभाव पड़े। प्रथम को सकारात्मक तथा द्वितीय को नकारात्मक संदर्भ समूह कहा जाता है। माता पिता के प्रति युवकों का विद्रोह व्यवहार का ऐसा प्रतिमान है जो कर नकारात्मक संदर्भ समूह का ही परिणाम है। नंबर फाइव, तुलनात्मक संदर्भ समूह एवं आदर्शमूलक संदर्भ समूह, कंपैरेटिव एंड नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। मार्टन ने संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक प्रारूप के आधार पर संदर्भ समूह के दो प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला तुलनात्मक संदर्भ समूह, दूसरा आदर्श मूलक संदर्भ समूह। मर्टन के अनुसार व्यक्तियों के व्यवहार का हम दो प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, प्रथम तुलनात्मक रूप में और द्वितीय आदर्शात्मक रूप में। इसी आधार पर मर्टन ने संदर्भ समूहों को उपयुक्त दो भागों में बांटा है। तुलनात्मक संदर्भ समूह उस समूह को कहा गया है जिसकी परिस्थिति गुणों को व्यक्ति अपने स्वयं के समूह से भिन्न रूप में समझने का प्रयत्न करता है। आदर्श मूलक संदर्भ समूह उस समूह को माना गया है जिसके व्यवहार प्रतिमान को आदर्श मानकर व्यक्ति स्वयं के लिए अपनाता है और उसी के मूल्यों और आदर्शों को ग्रहण करता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि संदर्भ समूह के बारे में एक ऐसी स्थिति की कल्पना भी की गई है जिसमें व्यक्ति अपने को समूह या समाज से कटा हुआ पाता है, स्वयं को वंचित, अलगावित एवं एकांतवासी महसूस करता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को यह निश्चय करना पड़ता है कि तुलनात्मक एवं आदर्श मूलक संदर्भ समूहों में से वह किस समूह के साथ अपना संबंध स्थापित करे। संदर्भ समूह के प्रकारों के अतिरिक्त मर्टन ने इस अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला है। पहला, दूसरे विशिष्ट। मर्टन की मान्यता है कि व्यक्ति के सम्मुख कुछ ऐसे लोगों की प्रतिमा होती है जिन्हें समाज में प्रतिष्ठित या उच्च समझा जाता है, क्योंकि वह स्वयं संस्तरण की प्रणाली में नीचे की सीढ़ी पर हैं, अतः वह ऊपर उठने की आकांक्षा रखता है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह प्रयत्न करता है। प्रतिष्ठित समझे वाले लोगों को वह अपना आदर्श मान लेता है और इन लोगों अथवा ऐसे किसी समूह के मूल्यों और व्यवहारों को अपना लेता है। ऐसा करके वह स्वयं ऊपर उठना चाहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना चाहता है। व्यक्ति जिन लोगों को प्रतिष्ठित मानकर जिनके अनुरूप स्वयं को बनाने का प्रयत्न करता है, मर्टन के अनुसार वे दूसरे विशिष्ट के नाम से जाने जाते हैं। वह इन्हें अपना आदर्श मानकर ऊपर उठने हेतु प्रयास करता है। दूसरा, अनुरूपता, समरूपता या प्रतिरूपता या असमता। जब व्यक्ति किसी गैर सदस्यता वाले समूहों को अपना आदर्श समूह बना लेता है तो वह ऐसे समूह के मूल्यों, आदर्शों या व्यवहार प्रतिमान को अपना लेता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह संदर्भ समूह के साथ समरूपता स्थापित कर लेता है। इसका एक परिणाम यह निकलता है कि वह अपने सदस्यता वाले समूह के मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार प्रतिमान की अवहेलना या अपेक्षा करता है, अपने सदस्यता समूह से असमानता या प्रतिरूपता स्थापित करता है, ऐसे समूह से समरूपता और अपने स्वयं के समूह से असमता स्थापित करने को वहीं तक उचित समझा जाता है जहां तक वह सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अपकार्यात्मक न हो। संदर्भ समूह से समरूपता स्थापित करने का यह अर्थ नहीं लगा लिया जाना चाहिए कि उसका ऐसा करना अनिवार्यतः अपकार्यात्मक ही होगा। यदि उसके ऐसा करने में सदस्यता समूह के स्थापित मूल्यों को बहुत अधिक ठेस पहुंचती है, तभी इसे सामाजिक व्यवस्था के लिए अपकार्यात्मक माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तीसरा, संदर्भ व्यक्ति या समूह का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस इंडिविजुअल और ग्रुप। मर्टन ने बतलाया है कि व्यक्ति अपने लिए संदर्भ समूह का ही चुनाव नहीं करता बल्कि संदर्भ व्यक्ति का भी चुनाव करता है। संदर्भ व्यक्ति का चुनाव करते समय आदर्श भूमिका, रोल मॉडल को ध्यान में रखा जाता है। कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को भूमिकाएं निभाते हुए देखता है और जिस व्यक्ति की भूमिकाएं उसे श्रेष्ठ लगती है वह उसे अपना आदर्श मान लेता है और उसी के अनुरूप स्वयं भी भूमिकाएं निभाने का प्रयत्न करता है। जिस व्यक्ति की भूमिकाओं को श्रेष्ठ मानकर उन्हें वह स्वयं अपने जीवन में निखारने का प्रयत्न करता है वह व्यक्ति उसके लिए संदर्भ व्यक्ति हुआ। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी शिक्षक के पढ़ाने के ढंग एवं छात्रों के साथ उसके व्यवहार करने के तरीके से प्रभावित होकर स्वयं भी शिक्षक बनता है और शिक्षक के रूप में उसी भांति भूमिकाएं निभाने का प्रयत्न करता है जिस भांति उस शिक्षक विशेष ने निभाई थी, तो जिस शिक्षक की भूमिकाओं से प्रभावित होकर उसे अपने आदर्श के रूप में स्वीकार किया वह शिक्षक ही उसके लिए संदर्भ व्यक्ति हुआ। संदर्भ समूह का चुनाव बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस समूह को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ऊंचा मानता है। सामाजिक संस्करण की प्रणाली में किस समूह को अपने समूह की तुलना में उन्नत समझता है। व्यक्ति की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि वह अपनी स्थिति को ऊंचा उठाए, उसे लोग प्रतिष्ठित समझें। इस हेतु वह अपने लिए किसी ऐसे समूह का चुनाव कर लेता है जो समाज में उच्च समझा जाता है। वह ऐसे समूह को आदर्श मानकर उसके मूल्यों, व्यवहार के तरीकों आदि को अपना लेता है और ऐसा करके वह सामाजिक संस्करण की प्रणाली में ऊपर उठना चाहता है। सामाजिक दृष्टि से ऊपर उठने या सम्मान पाने की इच्छा व्यक्ति को किसी समूह का चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है जिसका कि वह सदस्य नहीं है, यही उसका संदर्भ समूह होगा। चौथा, संदर्भ समूह के चुनाव को प्रभावित करने वाले तथ्य। मार्टन ने उन तथ्यों की एक सूची दी है जो व्यक्ति के लिए अपने समूह या किसी दूसरे समूह को संदर्भ समूह के रूप में चुनाव को प्रभावित करती है। समूहों की सदस्यता के लिए सामाजिक नियमों का स्पष्ट या अस्पष्ट होना, समूह में सदस्य जिस सीमा तक लिप्त हैं समूह में सदस्यता की वास्तविक अवधि, समूह में सदस्यता की उपेक्षित अवधि, समूह के अस्तित्व की वास्तविक अवधि, समूह के अस्तित्व की अपेक्षित अवधि, किसी समूह या उसके निर्णायक भागों का निरपेक्ष आकार, किसी समूह या उसके निर्णायक भागों का सापेक्षिक आकार, समूह की खुली या बंद आकृति, वास्तविक तथा महत्वपूर्ण सदस्यों का अनुपात, सामाजिक विभेदीकरण की मात्रा, स्तरीकरण का प्रकार एवं विस्तार, सामाजिक एकता का प्रकार एवं मात्रा, समूह की एकता, समूह के भीतर सामाजिक अंतःक्रिया की सीमा, समूह में सामाजिक संबंधों की प्रकृति, समूह के आदर्श नियमों के प्रति अपेक्षित समरूपता की मात्रा, विचलित या पथभ्रष्ट व्यवहार के प्रति सहनशीलता, आदर्शात्मक नियंत्रणों की व्यवस्था, समूह में भूमिकाओं का खुला अवलोकन किए जाने की सीमा, समूह की परिस्थिति संरचना, समूह की स्वायत्तता या निर्भरता की मात्रा, समूह के स्थायित्व की मात्रा, समूह के संरचनात्मक संदर्भ के स्थायित्व की मात्रा, समूह में स्थायित्व स्थापित करने के तरीके, समूह की सापेक्षित प्रतिष्ठा, समूह की सापेक्षिक शक्ति।